कुरिन्थियों के नाम पौलुस रसूल का दूसरा खत बाब एक। पौलुस की तरफ से जो खुदा की मर्जी से मसीह यीशु का रसूल है, और भाई तिमोथियस की तरफ से खुदा की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थियुस में है, और तमाम अखिया के सब मुकद्दसों के नाम, हमारे बाप खुदा और खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो, जो रहमतों का बाप और हर तरह की तसल्ली का खुदा है। वो हमारी सब मुसीबतों में हमको तसल्ली देता है, ताकि हम उस तसल्ली के सबब से जो खुदा हमें बख्शता है उनको भी तसल्ली दे सकें, जो किसी तरह की मुसीबत में है। क्योंकि जिस तरह मसीह के दुख हमको ज्यादा पहुंचते हैं, उसी तरह हमारी तसल्ली भी मसीह के वसीले से ज्यादा होती है। अगर हम मुसीबत उठाते हैं तो तुम्हारी तसल्ली और नजात के वास्ते, और अगर तसल्ली पाते हैं तो तुम्हारी तसल्ली के वास्ते, जिसकी तासीर से तुम सब्र के साथ उन दुखों की बर्दाश्त कर लेते हो जो हम भी सहते हैं। और हमारी उम्मीद तुम्हारे बारे में मजबूत है, क्योंकि हम जानते हैं कि जिस तरह तुम दुखों में शरीक हो, उसी तरह तसल्ली में भी हो।
ऐ भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उस मुसीबत से नावाकिफ रहो जो आसिया में हम पर पड़ी, कि हम हद से ज्यादा और ताकत से बाहर पस्त हो गए, यहाँ तक कि हमने जिंदगी से भी हाथ धो लिए, बल्कि अपने ऊपर मौत के हुक्म का यकीन कर चुके थे, ताकि अपना भरोसा न रखें बल्कि खुदा का जो मुर्दों को जिलाता है। चुनांचे उसी ने हमको ऐसी बड़ी हलाकत से छुड़ाया और छुड़ाएगा, और हमको उससे ये उम्मीद है कि आगे को भी छुड़ाता रहेगा। अगर तुम भी मिलकर दुआ से हमारी मदद करोगे, ताकि जो नेमत हमको बहुत लोगों के वसीले से मिली, उसका शुक्र भी बहुत से लोग हमारी तरफ से करें।
क्योंकि हमको अपने दिल की इस गवाही पर फख्र है कि हमारा चाल चलन दुनिया में, और खास कर तुम में, जिस्मानी हिकमत के साथ नहीं, बल्कि खुदा के फजल के साथ, यानी ऐसी पाकीजगी और सफाई के साथ रहा जो खुदा के लायक है। हम और बातें तुम्हें नहीं लिखते सिवा उनके जिन्हें तुम पढ़ते या मानते हो, और मुझे उम्मीद है कि आखिर तक मानते रहोगे। चुनांचे तुम में से कितनों ही ने मान भी लिया है कि हम तुम्हारा फख्र हैं, जिस तरह हमारे खुदावंद यीशु के दिन तुम भी हमारा फख्र होगे। और इसी भरोसे पर मैंने ये इरादा किया था कि पहले तुम्हारे पास आऊं, ताकि तुम्हें एक और नेमत मिले, और तुम्हारे पास होता हुआ मकदूनिया को जाऊं, और मकदूनिया से फिर तुम्हारे पास आऊं, और तुम मुझे यहूदिया की तरफ रवाना कर दो। बस मैंने जो ये इरादा किया था तो क्या तलवुन मिजाजी से किया था, या जिन बातों का कष्ट करता हूँ क्या जिस्मानी तौर पर करता हूँ कि हाँ हाँ भी करूँ और नहीं नहीं भी करूँ। खुदा की सच्चाई की कसम कि हमारे उस कलाम में जो तुमसे किया जाता है, हाँ और नहीं दोनों पाई नहीं जाती, क्योंकि खुदा का बेटा यीशु मसीह, जिसकी मनादी हमने, यानी मैंने और सिल्वानुस और तिमोथियस ने तुम में की, उसमें हाँ और नहीं दोनों ना थी, बल्कि उसमें हाँ ही हाँ हुई, क्योंकि खुदा के जितने वादे हैं वो सब उसमें हाँ के साथ हैं, इसीलिए उसके जरिए से आमीन भी हुई, ताकि हमारे वसीले से खुदा का जलाल जाहिर हो।
और जो हमको तुम्हारे साथ मसीह में कायम करता है, और जिसने हमको मसाह किया, वो खुदा है जिसने हम पर मोहर भी की और बयाने में रूह को हमारे दिलों में दिया।
मैं खुदा को गवाह करता हूँ कि मैं अब तक कुरिन्थियुस में इस वास्ते नहीं आया कि मुझे तुम पर रहम आता था। ये नहीं कि हम ईमान के बारे में तुम पर हुकूमत जताते हैं, बल्कि खुशी में तुम्हारे मददगार हैं, क्योंकि तुम ईमान ही से कायम रहते हो। कुरिन्थियों के नाम पौलुस रसूल का दूसरा खत बाब दो। मैंने अपने दिल में ये कष्ट किया था कि फिर तुम्हारे पास गमगीन होकर ना आऊं, क्योंकि अगर मैं तुमको गमगीन करूं, तो मुझे कौन खुश करेगा सिवा उसके जो मेरे सबब से गमगीन हुआ। और मैंने तुमको वही बात लिखी थी ताकि ऐसा ना हो कि मुझे आकर जिनसे खुश होना चाहिए था मैं उनके सबब से गमगीन हूँ, क्योंकि मुझे तुम सब पर इस बात का भरोसा है कि जो मेरी खुशी है वही तुम सब की है, क्योंकि मैंने बड़ी मुसीबत और दिलगिरी की हालत में बहुत से आंसू बहा बहा कर तुमको लिखा था, लेकिन इस वास्ते नहीं कि तुमको गम हो, बल्कि इस वास्ते कि तुम उस बड़ी मोहब्बत को मालूम करो जो मुझे तुमसे है। और अगर कोई शख्स गम का बाइस हुआ है तो मेरे ही गम का नहीं, बल्कि किसी कदर तुम सबके गम का बाइस हुआ। यही सजा जो उसने अक्सरों की तरफ से पाई ऐसे शख्स के वास्ते काफी है। बस बरक्स इसके यही बेहतर है कि उसका कसूर माफ करो और तसल्ली दो ताकि वो गम की कसरत से तबाह ना हो। इसलिए मैं तुमसे इल्तिमास करता हूँ कि उसके बारे में मोहब्बत का फतवा दो, क्योंकि मैंने इस वास्ते भी लिखा था कि तुम्हें आजमा लूं कि सब बातों में फरमा बरदार हो या नहीं। जिसे तुम कुछ मुआफ करते हो उसे मैं भी मुआफ करता हूँ, क्योंकि जो कुछ मैंने मुआफ किया अगर किया तो मसीह का कायम मुकाम होकर तुम्हारी खातिर मुआफ किया, ताकि शैतान का हम पर दाव ना चले,
क्योंकि हम उसके हीलों से ना वाकिफ नहीं।
और जब मैं मसीह की खुशखबरी देने को त्रोआस में आया और खुदावंद में मेरे लिए दरवाजा खुल गया तो मेरी रूह को आराम ना मिला, इसलिए कि मैंने अपने भाई टीटुस को ना पाया, बस उनसे रुखसत होकर मैं दुनिया को चला गया।
मगर खुदा का शुक्र जो मसीह में हमको हमेशा असीरों की तरह गश्त कराता है और अपने इल्म की खुशबू हमारे वसीले से हर जगह फैलाता है, क्योंकि हम खुदा के नजदीक नजात पाने वालों और हलाक होने वालों दोनों के लिए मसीह की खुशबू है। बाज के वास्ते तो मरने के लिए मौत की बू और बाज के वास्ते जीने के लिए जिंदगी की बू है, और कौन इन बातों के लायक है, क्योंकि हम उन बहुत लोगों की मानन नहीं जो खुदा के कलाम में आमेजिश करते हैं, बल्कि दिल की सफाई से और खुदा की तरफ से खुदा को हाजिर जानकर मसीह में बोलते हैं।
कुरिन्थियों के नाम पौलुस रसूल का दूसरा खत बाप 3। क्या हम फिर अपनी नेकनामी जताना शुरू करते हैं, या हमको बास की तरह नेकनामी के खत तुम्हारे पास लाने या तुमसे लेने की हाजत है? हमारा जो खत हमारे दिलों पर लिखा हुआ है वो तुम हो, और उसे सब आदमी जानते और पढ़ते हैं। जाहिर है कि तुम मसीह का वो खत हो जो हमने खादिमों के तौर पर लिखा, स्याही से नहीं बल्कि जिंदा खुदा के रूह से, पत्थर की तख्तियों पर नहीं बल्कि गोश्त की यानी दिल की तख्तियों पर।
हम मसीह की मारिफत खुदा पर ऐसा ही भरोसा रखते हैं, ये नहीं कि बजाते खुद हम इस लायक हैं कि अपनी तरफ से कुछ ख्याल भी कर सकें, बल्कि हमारी लियाकत खुदा की तरफ से है जिसने हमको नए अहद के खादिम होने के लायक भी किया, लफ्जों के खादिम नहीं बल्कि रूह के, क्योंकि लफ्ज मार डालते हैं मगर रूह जिंदा करती है।
और जब मौत का वो अहद जिसके हुरूफ पत्थरों पर खोदे गए थे ऐसा जलाल वाला हुआ कि बनी इसराइल मूसा के चेहरे पर उस जलाल के सबब से जो उसके चेहरे पर था गौर से नजर न कर सके, हालांकि वो घटता जाता था, तो रूह का अहद तो जरूरी ही जलाल वाला होगा, क्योंकि जब मुजरिम ठहराने वाला अहद जलाल वाला था तो रास्तबाजी का अहद तो जरूरी ही जलाल वाला होगा, बल्कि इस सूरत में वो जलाल वाला इस बे इंतहा जलाल के सबब से बेजलाल ठहरा, क्योंकि जब मिटने वाली चीज जलाल वाली थी تو باقی رہنے والی چیز تو ضرور ہی جلال والی ہوگی۔
بس ہم ایسی امید کر کے بڑی دلیری سے بولتے ہیں اور موسیٰ کی طرح نہیں ہیں جس نے اپنے چہرے پر نقاب ڈالا تاکہ بنی اسرائیل اس مٹنے والی چیز کے انجام کو نہ دیکھ سکیں، لیکن ان کے خیالات کثیف ہو گئے کیونکہ آج تک پرانے عہد نامے کو پڑھتے وقت ان کے دلوں پر وہی پردہ پڑا رہتا ہے اور وہ مسیح میں اٹھ جاتا ہے۔ مگر آج تک جب کبھی موسیٰ کی کتاب پڑھی جاتی ہے تو ان کے دل پر پردہ پڑا رہتا ہے، لیکن جب کبھی ان کا دل خداوند کی طرف پھرے گا تو وہ پردہ اٹھ جائے گا۔
اور وہ خداوند روح ہے، اور جہاں کہیں خداوند کا روح ہے وہاں آزادی ہے۔ مگر جب ہم سب کے بے نقاب چہروں سے خداوند کا جلال اس طرح منعکس ہوتا ہے جس طرح آئینے میں، تو اس خداوند کے وسیلے سے جو روح ہے ہم اسی جلالی صورت میں درجہ بدرجہ بدلتے جاتے ہیں۔ کرنتھیوں کے نام پالوس رسول کا پہلا خط باب 4۔ آدمی ہم کو مسیح کا خادم اور خدا کے بھیدوں کا مختار سمجھے۔
اور یہاں مختار میں یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ دیانتدار نکلے،
لیکن میرے نزدیک یہ نہایت خفیف بات ہے کہ تم یا کوئی انسانی عدالت مجھے پرکھے، بلکہ میں خود بھی اپنے آپ کو نہیں پرکھتا، کیونکہ میرا دل تو مجھے ملامت نہیں کرتا، مگر اس سے میں راز باز نہیں ٹھہرتا، بلکہ میرا پرکھنے والا خداوند ہے۔ بس جب تک خداوند نہ آئے وقت سے پہلے کسی بات کا فیصلہ نہ کرو، وہی تاریکی کی پوشیدہ باتیں روشن کر دے گا اور دلوں کے منصوبے ظاہر کر دے گا، اور اس وقت ہر ایک کی تعریف خدا کی طرف سے ہوگی۔ اور آئے بھائیوں، میں نے ان باتوں میں تمہاری خاطر اپنا اور پلوس کا ذکر مثال کے طور پر کیا ہے، تاکہ تم ہمارے وسیلے سے یہ سیکھو کہ لکھے ہوئے سے تجاوز نہ کرو اور ایک کی تائید میں دوسرے کے برخلاف شیخی نہ مارو۔ تجھ میں اور دوسرے میں کون فرق کرتا ہے، اور تیرے پاس کون سی ایسی چیز ہے جو تو نے دوسرے سے نہیں پائی؟ اور جب تو نے دوسرے سے پائی تو فخر کیوں کرتا ہے کہ گویا نہیں پائی؟ تم تو پہلے ہی سے آسودہ ہو اور پہلے ہی سے دولت مند ہو، اور تم نے ہمارے بغیر بادشاہی کی، اور کاش کہ تم بادشاہی کرتے تاکہ ہم بھی تمہارے ساتھ بادشاہی کرتے۔ میری دانش میں خدا نے ہم رسولوں کو سب سے ادنا ٹھہرا کر ان لوگوں کی طرح پیش کیا ہے جن کے قتل کا حکم ہو چکا ہو، کیونکہ ہم دنیا اور فرشتوں اور آدمیوں کے لیے ایک تماشا ٹھہرے۔ ہم مسیح کی خاطر بے وقوف ہیں، مگر تم مسیح میں عقل مند ہو۔ ہم کمزور ہیں اور تم زوراور، تم عزت دار ہو اور ہم بے عزت، ہم اس وقت تک بھوکے پیاسے ننگے ہیں اور مکھے کھاتے اور آوارہ پھرتے ہیں، اور اپنے ہاتھوں سے کام کر کے مشقت اٹھاتے ہیں۔ لوگ برا کہتے ہیں، ہم دعا دیتے ہیں، وہ ستاتے ہیں، ہم سہتے ہیں، وہ بدنام کرتے ہیں، ہم منت سماجت کرتے ہیں۔ ہم آج تک دنیا کے کوڑے اور سب چیزوں کی جھڑن کی مانند رہے۔ میں تمہیں شرمندہ کرنے کے لیے یہ باتیں نہیں لکھتا، بلکہ اپنے پیارے فرزند جان کر تم کو نصیحت کرتا ہوں، کیونکہ اگر مسیح میں تمہارے استاد 10,000 بھی ہوتے تو بھی تمہارے باپ بہت سے نہیں، اس لیے کہ میں ہی انجیل کے وسیلے سے مسیح یسوع میں تمہارا باپ بنا۔ بس میں تمہاری منت کرتا ہوں کہ میری مانند بنو۔ اسی واسطے میں نے تیموتیس کو تمہارے پاس بھیجا، وہ خداوند میں میرا پیارا اور دیانتدار فرزند ہے، اور میرے ان طریقوں کو جو مسیح میں ہیں تمہیں یاد دلائے گا، جس طرح میں ہر جگہ ہر کلیسیا میں تعلیم دیتا ہوں۔ بعض ایسی شیخی مارتے ہیں کہ گویا میں تمہارے پاس آنے ہی کا نہیں، لیکن خداوند نے چاہا تو میں تمہارے پاس جلد آؤں گا، اور شیخی بازوں کی باتوں کو نہیں بلکہ ان کی قدرت کو معلوم کروں گا، کیونکہ خدا کی بادشاہی باتوں پر نہیں بلکہ قدرت پر موقوف ہے۔ تم کیا چاہتے ہو، کہ میں لکڑی لے کر تمہارے پاس آؤں یا محبت اور نرم مزاجی سے؟ گرنتھیوں کے نام، پولوس رسول کا دوسرا خط، باب 5۔ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جب ہمارے خیمے کا گھر جو زمین پر ہے گرایا جائے گا، تو ہم کو خدا کی طرف سے آسمان پر ایک ایسی عمارت ملے گی جو ہاتھ کا بنا ہوا گھر نہیں بلکہ ابدی ہے۔ چنانچہ ہم اس میں کراہتے ہیں اور بڑی آرزو رکھتے ہیں کہ اپنے آسمانی گھر سے ملبس ہو جائیں، تاکہ ملبس ہونے کے باعث ننگے نہ پائے جائیں، کیونکہ ہم اس خیمے میں رہ کر بوجھ کے مارے کراہتے ہیں۔ اس لیے نہیں کہ یہ لباس اتارنا چاہتے ہیں، بلکہ اس پر اور پہننا چاہتے ہیں، تاکہ وہ جو فانی ہے زندگی میں غرق ہو جائے۔
اور جس نے ہم کو اسی بات کے لیے تیار کیا وہ خدا ہے، اور اسی نے ہمیں روح بیانے میں دیا، بس ہمیشہ ہماری خاطر جمع رہتی ہے۔ اور یہ جانتے ہیں کہ جب تک ہم بدن کے وطن میں ہیں، خداوند کے ہاں سے جلا وطن ہیں۔
کیونکہ ہم ایمان پر چلتے ہیں، نہ کہ آنکھوں دیکھے پر۔ غرض ہماری خاطر جمع ہے، اور ہم کو بدن کے وطن سے جدا ہو کر خداوند کے وطن میں رہنا زیادہ منظور ہے۔ اسی واسطے ہم یہ حوصلہ رکھتے ہیں کہ وطن میں ہوں خواہ جلا وطن، اس کو خوش کریں، کیونکہ ضرور ہے کہ مسیح کے تخت عدالت کے سامنے جا کر ہم سب کا حال ظاہر کیا جائے، تاکہ ہر شخص اپنے ان کاموں کا بدلہ پائے جو اس نے بدن کے وسیلے سے کیے ہوں، خواہ بھلے ہو خواہ برے۔ بس ہم خداوند کے خوف کو جان کر آدمیوں کو سمجھاتے ہیں، اور خدا پر ہمارا حال ظاہر ہے، اور مجھے امید ہے کہ تمہارے دلوں پر بھی ظاہر ہوا ہوگا۔ ہم پھر اپنی نیک نامی تم پر نہیں جتاتے، بلکہ ہم اپنے سبب سے تم کو فخر کرنے کا موقع دیتے ہیں، تاکہ تم ان کو جواب دے سکو جو ظاہر پر فخر کرتے ہیں اور باطن پر نہیں۔ اگر ہم بے خود ہیں تو خدا کے واسطے ہیں، اور اگر ہوش میں ہیں تو تمہارے واسطے،
کیونکہ مسیح کی محبت ہم کو مجبور کر دیتی ہے، اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ایک سب کے واسطے موا تو سب مر گئے، اور وہ اس لیے سب کے واسطے موا کہ جو جیتے ہیں وہ آگے کو اپنے لیے نہ جئیں، بلکہ اس کے لیے جو ان کے واسطے موا اور پھر جی اٹھا۔ پس اب سے ہم کسی کو جسم کی حیثیت سے نہ پہچانیں گے۔ ہاں، اگرچہ مسیح کو بھی جسم کی حیثیت سے جانا تھا، مگر اب سے نہیں جانیں گے۔
اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نئی ہو گئیں، اور سب چیزیں خدا کی طرف سے ہیں، جس نے مسیح کے وسیلے سے اپنے ساتھ ہمارا میل ملاپ کر لیا، اور میل ملاپ کی خدمت ہمارے سپرد کی۔ مطلب یہ ہے کہ خدا نے مسیح میں ہو کر اپنے ساتھ دنیا کا میل ملاپ کر لیا، اور ان کی تقصیروں کو ان کے ذمے نہ لگایا، اور اس نے میل ملاپ کا پیغام ہمیں سونپ دیا ہے۔
بس ہم مسیح کے الچی ہیں، گویا ہمارے وسیلے سے خدا التماس کرتا ہے۔ ہم مسیح کی طرف سے منت کرتے ہیں کہ خدا سے میل ملاپ کر لو۔ جو گناہ سے واقف نہ تھا، اسی کو اس نے ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا، تاکہ ہم اس میں ہو کر خدا کی راست بازی ہو جائیں۔
گرنتھیوں کے نام، پولوس رسول کا دوسرا خط، باب 6۔ اور ہم جو اس کے ساتھ کام میں شریک ہیں، یہ بھی التماس کرتے ہیں کہ خدا کا فضل جو تم پر ہوا بے فائدہ نہ رہنے دو، کیونکہ وہ فرماتا ہے کہ میں نے قبولیت کے وقت تیری سن لی، اور نجات کے دن تیری مدد کی۔ دیکھو اب قبولیت کا وقت ہے، دیکھو یہ نجات کا دن ہے۔ ہم کسی بات میں ٹھوکر کھانے کا کوئی موقع نہیں دیتے، تاکہ ہماری خدمت پر حرف نہ آئے، بلکہ خدا کے خادموں کی طرح ہر بات سے اپنی خوبی ظاہر کرتے ہیں۔ بڑے صبر سے، مصیبت سے، احتیاج سے، تنگی سے، کوڑے کھانے سے، قید ہونے سے، ہنگاموں سے، محنتوں سے، بیداری سے، فاقوں سے، پاکیزگی سے، علم سے، تحمل سے، مہربانی سے، روح القدس سے، بے ریا محبت سے، کلام حق سے، خدا کی قدرت سے، راز بازی کے ہتھیاروں کے وسیلے سے جو دہنے بائیں ہیں، عزت اور بے عزتی کے وسیلے سے، بدنامی اور نیک نامی کے وسیلے سے، گو گمراہ کرنے والے معلوم ہوتے ہیں پھر بھی سچے ہیں، گمناموں کی مانند ہیں تو بھی مشہور ہیں، مرتے ہوئوں کی مانند ہیں مگر دیکھو جیتے ہیں، مار کھانے والوں کی مانند ہیں مگر جان سے مارے نہیں جاتے، غمگینوں کی مانند ہیں لیکن ہمیشہ خوش رہتے ہیں، کنگالوں کی مانند ہیں مگر بوتیروں کو دولت مند کر دیتے ہیں، ناداروں کی مانند ہیں تو بھی سب کچھ رکھتے ہیں۔ اے کرنتھیو، ہم نے تم سے کھل کر باتیں کی، ہمارا دل تمہاری طرف سے کشادہ ہو گیا، ہمارے دلوں میں تمہارے لیے تنگی نہیں مگر تمہارے دلوں میں تنگی ہے۔ پس میں فرزند جان کر تم سے کہتا ہوں کہ تم بھی اس کے بدلے میں کشادہ دل ہو جاؤ۔
بے ایمانوں کے ساتھ نہ ہموار جوئے میں نہ جتو، کیونکہ راست بازی اور بے دینی میں کیا میل جول، یا روشنی اور تاریکی میں کیا شراکت، مسیح کو بلیال کے ساتھ کیا موافقت، یا ایماندار کا بے ایمان سے کیا واسطہ، اور خدا کے مقدس کو بتوں سے کیا مناسبت ہے، کیونکہ ہم زندہ خدا کے مقدس ہیں۔ چنانچہ خدا نے فرمایا ہے کہ میں ان میں بسوں گا اور ان میں چلوں پھروں گا اور میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میری امت ہوں گے۔ اس واسطے خداوند فرماتا ہے کہ ان میں سے نکل کر الگ رہو اور ناپاک چیز کو نہ چھوو، تو میں تم کو قبول کر لوں گا اور تمہارا باپ ہوں گا اور تم میرے بیٹے بیٹیاں ہوگے۔ یہ خداوند قادر مطلق کا قول ہے۔
کرنتھیوں کے نام، پولوس رسول کا دوسرا خط، باب 7۔ بس آئے عزیزو، چونکہ ہم سے ایسے وعدے کیے گئے، آؤ ہم اپنے آپ کو ہر طرح کی جسمانی اور روحانی آلودگی سے پاک کریں اور خدا کے خوف کے ساتھ پاکیزگی کو کمال تک پہنچائیں۔ ہم کو اپنے دل میں جگہ دو، ہم نے کسی سے بے انصافی نہیں کی، کسی کو نہیں بگاڑا، کسی سے دغا نہیں کی۔ میں تمہیں مجرم ٹھہرانے کے لیے یہ نہیں کہتا، کیونکہ پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ تم ہمارے دلوں میں ایسے بس گئے ہو کہ ہم تم ایک ساتھ مرے اور جیئیں۔ میں تم سے بڑی دلیری کے ساتھ باتیں کرتا ہوں، مجھے تم پر بڑا فخر ہے، مجھ کو پوری تسلی ہو گئی ہے۔ جتنی مصیبتیں ہم پر آتی ہیں ان سب میں میرا دل خوشی سے لبریز رہتا ہے، کیونکہ جب ہم مقدونیہ میں آئے اس وقت بھی ہمارے جسم کو چین نہ ملا بلکہ ہر طرف سے مصیبت میں گرفتار رہے۔ باہر لڑائیاں تھیں، اندر دہشتیں، تو بھی عاجزوں کو تسلی بخشنے والے یعنی خدا نے تیتوس کے آنے سے ہم کو تسلی بخشی، اور نہ صرف اس کے آنے سے بلکہ اس کی اس تسلی سے بھی جو اس کو تمہاری طرف سے ہوئی، اور اس نے تمہارا اشتیاق، تمہارا غم، تمہارا جوش جو میری بابت تھا ہم سے بیان کیا، جس سے میں اور بھی خوش ہوا۔ وہ میں نے تم کو اپنے خط سے غمگین کیا مگر اس سے پچھتاتا نہیں، اگرچہ پہلے پچھتاتا تھا۔ چنانچہ دیکھتا ہوں اس خط سے تم کو غم ہوا وہ تھوڑے ہی عرصے تک رہا، اب میں اس لیے خوش نہیں ہوں کہ تم کو غم ہوا بلکہ اس لیے کہ تمہارے غم کا انجام توبہ ہوا، کیونکہ تمہارا غم خدا پرستی کا تھا تاکہ تم کو ہماری طرف سے کسی طرح کا نقصان نہ ہو۔ کیونکہ خدا پرستی کا غم ایسی توبہ پیدا کرتا ہے جس کا انجام نجات ہے اور اس سے پچھتانا نہیں پڑتا، مگر دنیا کا غم मौत पैदा करता है। पर देखो, इसी बात ने कि तुम खुदा परस्ती के तौर पर गमगीन हुए, तो मैं किस कदर सरगर्मी और उज्र और खफगी और खौफ और इश्तियाक और जोश और इंतकाम पैदा किया। तुमने हर तरह से साबित कर दिखाया कि तुम इस अम्र में बरी हो। बस अगरचे मैंने तुमको लिखा था, मगर ना उसके बाईस लिखा जिसने बेइंसाफी की, और ना उसके बाईस जिस पर बेइंसाफी हुई, बल्कि इसलिए कि तुम्हारी सरगर्मी जो हमारे वास्ते है खुदा के हुजूर तुम पर जाहिर हो जाए।
इसीलिए हमको तसल्ली हुई है, और हमारी इस तसल्ली में हमको तीतुस की खुशी के सबब से और भी ज्यादा खुशी हुई, क्योंकि तुम सबके बाईस उसकी रूह फिर ताजा हो गई।
और अगर मैंने उसके सामने तुम्हारी बाबत कुछ फख्र किया तो शर्मिंदा ना हुआ, बल्कि जिस तरह हमने सब बातें तुमसे सच्चाई से कही, उसी तरह जो फख्र हमने तीतुस के सामने किया वो भी सच निकला। और जब उसको तुम सब की फरमा बरदारी याद आती है कि तुम किस तरह डरते और कांपते हुए उससे मिले, तो उसकी दिली मोहब्बत तुमसे और भी ज्यादा होती जाती है। मैं खुश हूँ कि हर बात में तुम्हारी तरफ से मेरी खातिर जमा है। कुरिन्थियों के नाम पौलुस रसूल का दूसरा खत, बाब 8। अब आए भाइयों, हम तुमको खुदा के उस फजल की खबर देते हैं जो मकदूनिया की कलीसियाओं पर हुआ है, कि मुसीबत की बड़ी आजमाइश में उनकी बड़ी खुशी और सख्त गरीबी ने उनकी सखावत को हद से ज्यादा कर दिया।
और मैं गवाही देता हूँ कि उन्होंने मकदूर के मुआफिक बल्कि मकदूर से भी ज्यादा अपनी खुशी से दिया, और इस खैरात और मुकद्दसों की खिदमत की शराकत की बाबत हमसे बड़ी मिन्नत के साथ दरख्वास्त की, और हमारी उम्मीद के मुआफिक ही नहीं दिया, बल्कि अपने आप को पहले खुदावंद के और फिर खुदा की मर्जी से हमारे सुपुर्द किया।
इस वास्ते हमने तीतुस को नसीहत की कि जैसे उसने पहले शुरू किया था, वैसे ही तुम में इस खैरात के काम को पूरा भी करे। बस जैसे तुम हर बात में ईमान और कलाम और इल्म और पूरी सरगर्मी और उस मोहब्बत में जो हमसे रखते हो सबकत ले गए हो, वैसे ही इस खैरात के काम में भी सबकत ले जाओ। मैं हुक्म के तौर पर नहीं कहता, बल्कि इसलिए कि औरों की सरगर्मी से तुम्हारी मोहब्बत की सच्चाई को आजमाऊं, क्योंकि तुम हमारे खुदावंद यीशु मसीह के फजल को जानते हो कि वो अगरचे दौलतमंद था, मगर तुम्हारी खातिर गरीब बन गया, ताकि तुम उसकी गरीबी के सबब से दौलतमंद हो जाओ। और मैं इस अम्र में अपनी राय देता हूँ, क्योंकि ये तुम्हारे लिए मुफीद है, इसलिए कि तुम पिछले साल से न सिर्फ इस काम में बल्कि इसके इरादे में भी अव्वल थे।
बस अब इस काम को पूरा भी करो, ताकि जैसे तुम इरादा करने में मुस्तैद थे, वैसे ही मकदूर के मुआफिक तकमील भी करो, क्योंकि अगर नियत हो तो खैरात उसके मुआफिक मकबूल होगी जो आदमी के पास है, न उसके मुआफिक जो उसके पास नहीं। ये नहीं कि औरों को आराम मिले और तुमको तकलीफ हो, बल्कि बराबरी के तौर पर इस वक्त तुम्हारी दौलत से उनकी कमी पूरी हो, ताकि उनकी दौलत से भी तुम्हारी कमी पूरी हो, और इस तरह बराबरी हो जाए। चुनांचे लिखा है कि जिसने बहुत जमा किया उसका कुछ ज्यादा न निकला, और जिसने थोड़ा जमा किया उसका कुछ कम न निकला।
खुदा का शुक्र है जो तीतुस के दिल में तुम्हारे वास्ते वैसी ही सरगर्मी पैदा करता है, क्योंकि उसने हमारी नसीहत को मान लिया, बल्कि बड़ा सरगर्म होकर अपनी खुशी से तुम्हारी तरफ रवाना हुआ।
और हमने उसके साथ उस भाई को भेजा जिसकी तारीफ खुशखबरी के सबब से तमाम कलीसियाओं में होती है, और सिर्फ यही नहीं, बल्कि वो कलीसियाओं की तरफ से इस खैरात के बारे में हमारा हम सफर मुकर्रर हुआ, और हम ये खिदमत इसलिए करते हैं कि खुदावंद का जलाल और हमारा शौक जाहिर हो।
और हम बचते रहते हैं कि जिस बड़ी खैरात के बारे में खिदमत करते हैं उसकी बाबत कोई हम पर हर्फ ना लाए, क्योंकि हम ऐसी चीजों की तदबीर करते हैं जो न सिर्फ खुदावंद के नजदीक भली हैं, बल्कि आदमियों के नजदीक भी। और हमने उनके साथ अपने उस भाई को भेजा है जिसको हमने बहुत सी बातों में बारहा आजमा कर सरगर्म पाया है, मगर चूंकि उसको तुम पर बड़ा भरोसा है इसलिए अब बहुत ज्यादा सरगर्म है। अगर कोई तीतुस की बाबत पूछे तो वो मेरा शरीक और तुम्हारे वास्ते मेरा हम खिदमत है। अगर हमारे भाइयों की बाबत पूछा जाए तो वो कलीसियाओं के कासिद और मसीह का जलाल है। बस अपनी मोहब्बत और हमारा वो फख्र जो तुम पर है कलीसियाओं के रूबरू उन पर साबित करो। कुरिन्थियों के नाम पौलुस रसूल का दूसरा खत बाब 9। जो खिदमत मुकद्दसों के वास्ते की जाती है उसकी बाबत मुझे तुमको लिखना फिजूल है, क्योंकि मैं तुम्हारा शौक जानता हूँ जिसके सबब से मैं दुनिया के लोगों के आगे तुम पर फख्र करता हूँ कि अखिया के लोग पिछले साल से तैयार हैं और तुम्हारी सरगर्मी ने अक्सर लोगों को उभारा। लेकिन मैंने भाइयों को इसलिए भेजा कि हम जो फख्र इस बारे में तुम पर करते हैं वो बेअसल ना ठहरे, बल्कि तुम मेरे कहने के मुआफिक तैयार रहो। ऐसा ना हो कि अगर मकदूनिया के लोग मेरे साथ आए और तुमको तैयार ना पाए तो हम ये नहीं कहते कि तुम उस भरोसे के सबब से शर्मिंदा हो।
इसलिए मैंने भाइयों से ये दरख्वास्त करना जरूर समझा कि वो पहले से तुम्हारे पास जाकर तुम्हारी मौदा बख्शिश को पेशतर से तैयार कर रखें, ताकि वो बख्शिश की तरह तैयार रहे न कि जबरदस्ती के तौर पर। लेकिन बात यह है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। जिस कद्र हर एक ने अपने दिल में ठहराया है उसी कद्र दे, न दरेक करके और न लाचारी से, क्योंकि खुदा खुशी से देने वालों को अजीज रखता है और खुदा तुम पर हर तरह का फजल कसरत से कर सकता है, ताकि तुमको हमेशा हर चीज काफी तौर पर मिला करे और हर नेक काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ मौजूद रहा करे। चुनांचे लिखा है कि उसने बखेरा है, उसने कंगालों को दिया है, उसकी रास्तबाजी अब तक बाकी रहेगी।
बस जो बोने वाले के लिए बीज और खाने के लिए रोटी बहम पहुंचाता है वही तुम्हारे लिए बीज बहम पहुंचाएगा और उसमें तरक्की देगा और तुम्हारी राजबाजी के फलों को बढ़ाएगा और तुम हर चीज को इफ़राज से पाकर सब तरह की सखावत करोगे जो हमारे वसीले से खुदा की शुक्रगुजारी का बायस होती है, क्योंकि इस खिदमत के अंजाम देने से न सिर्फ मुकद्दसों की एहतियाजें रफा होती हैं बल्कि बहुत लोगों की तरफ से खुदा की बड़ी शुक्रगुजारी होती है। इसलिए कि जो नियत इस खिदमत से साबित हुई उसके सबब से वो खुदा की तमजीद करते हैं कि तुम मसीह की खुशखबरी का इकरार करके उस पर ताबेदारी से अमल करते हो और उनकी और सब लोगों की मदद करने में सखावत करते हो और वो तुम्हारे लिए दुआ करते हैं और तुम्हारे मुश्ताक हैं, इसलिए कि तुम पर खुदा का बड़ा ही फजल है। शुक्र खुदा का उसकी उस बख्शिश पर जो बयान से बाहर है। कुरिन्थियों के नाम पौलुस रसूल का दूसरा खत बाब 10। मैं पौलुस जो तुम्हारे रूबरू आजिज और पीठ पीछे तुम पर दिलेर हूँ, मसीह का हिल्म और नरमी याद दिलाकर खुद तुमसे इल्तिमास करता हूँ, बल्कि मिन्नत करता हूँ कि मुझे हाजिर होकर उस बेबाकी के साथ दिलेर न होना पड़े जिससे मैं बाज लोगों पर दिलेर होने का कष्ट रखता हूँ, जो हमें यूँ समझते हैं कि हम जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं, क्योंकि हम अगरचे जिस्म में जिंदगी गुजारते हैं मगर जिस्म के तौर पर लड़ते नहीं, इसलिए कि हमारी लड़ाई के हथियार जिस्मानी नहीं बल्कि खुदा के नजदीक किलों को ढह देने के काबिल हैं। चुनांचे हम तसव्वुरात और हर एक ऊंची चीज को जो खुदा की पहचान के बरखिलाफ सर उठाए हुए है ढह देते हैं, और हर एक ख्याल को कैद करके मसीह का फरमा बरदार बना देते हैं। और हम तैयार हैं कि जब तुम्हारी फरमा बरदारी पूरी हो तो हर तरह की नाफरमानी का बदला लें। तुम उन चीजों पर नजर करते हो जो आंखों के सामने हैं। अगर किसी को अपने आप पर यह भरोसा है कि वो मसीह का है, तो अपने दिल में ये भी सोच ले कि जैसे वो मसीह का है वैसे ही हम भी हैं। क्योंकि अगर मैं इस इख्तियार पर कुछ ज्यादा फख्र भी करूं जो खुदावन ने तुम्हारे बनाने के लिए दिया है ना कि बिगाड़ने के लिए, तो मैं शर्मिंदा ना होऊंगा। ये मैं इसलिए कहता हूँ कि खतों के जरिए से तुमको डराने वाला ना ठहरूं, क्योंकि कहते हैं कि उसके खत तो अलबत्ता मौसर और जबरदस्त हैं, लेकिन जब खुद मौजूद होता है तो कमजोर सा मालूम होता है और उसकी तकरीर लचर है। बस ऐसा कहने वाला समझ रखे कि जैसा पीठ पीछे खतों में हमारा कलाम है, वैसा ही मौजूदगी के वक्त हमारा काम भी होगा। क्योंकि हमारी ये जरूरत नहीं कि अपने आप को उन चंद शख्सों में शुमार करें या उनसे कुछ नस्बत दें जो अपनी नेक नामी जताते हैं, लेकिन वो खुद अपने आप को आपस में वजन करके और अपने आप को एक दूसरे से नस्बत देकर नादान ठहरते हैं। लेकिन हम अंदाजे से ज्यादा फख्र ना करेंगे बल्कि उसी इलाके के अंदाजे के मुआफिक जो खुदा ने हमारे लिए मुकर्रर किया है जिसमें तुम भी आ गए हो, क्योंकि हम अपने आप को हद से ज्यादा नहीं बढ़ाते जैसे कि तुम तक ना पहुंचने की सूरत में होता, बल्कि हम मसीह की खुशखबरी देते हुए तुम तक पहुंच गए थे। और हम अंदाजे से ज्यादा यानी औरों की मेहनतों पर फख्र नहीं करते, लेकिन उम्मीदवार हैं कि जब तुम्हारे ईमान में तरक्की हो तो हम तुम्हारे सबब से अपने इलाके के मुआफिक और भी बढ़े, ताकि तुम्हारी सरहद से परे खुशखबरी पहुंचा दें, न कि गैर के इलाके में बनी बनाई चीजों पर फख्र करें।
गर्ज जो फख्र करे वो खुदावन पर फख्र करे, क्योंकि जो अपनी नेक नामी जताता है वो मकबूल नहीं, बल्कि जिसको खुदावन नेक नाम ठहराता है वही मकबूल है।
कुरिन्थियों के नाम पौलुस रसूल का दूसरा खत बाब 11। काश के तुम मेरी थोड़ी सी बेवकूफी की बर्दाश्त कर सकते। हाँ, तुम मेरी बर्दाश्त करते तो हो। मुझे तुम्हारी बाबत खुदा की सी गैरत है, क्योंकि मैंने एक ही शोहर के साथ तुम्हारी निस्बत की है, ताकि तुमको पाक दामन कुंवारी की मानिंद मसीह के पास हाजिर करूं। लेकिन मैं डरता हूँ कहीं ऐसा न हो कि जिस तरह सांप ने अपनी मक्कारी से हवा को बहकाया, उसी तरह तुम्हारे ख्यालात भी उस खलूस और पाक दामनी से हट जाएं जो मसीह के साथ होनी चाहिए। क्योंकि जो आता है अगर वो किसी दूसरे यीशु की मनादी करता है जिसकी हमने मनादी नहीं की, या दूसरी खुशखबरी मिली जिसको तुमने कबूल ना किया था, तो तुम्हारा बर्दाश्त करना बजा है। मैं तो अपने आप को उन अफजल रसूलों से कुछ कम नहीं समझता, और अगर तकरीर में बेशऊर हूँ तो इल्म के एतबार से तो नहीं, बल्कि हमने उसको हर एक बात में तमाम आदमियों पर तुम्हारी खातिर जाहिर कर दिया। क्या ये मुझसे खता हुई कि मैंने तुम्हें खुदा की खुशखबरी मुफ्त पहुंचाकर अपने आप को पस्त किया ताकि तुम बुलंद हो जाओ? मैंने और कलीसियाओं को लूटा यानी उनसे उजरत ली ताकि तुम्हारी खिदमत करूं, और जब मैं तुम्हारे पास था और हाजतमंद हो गया था तो भी मैंने किसी पर बोझ नहीं डाला, क्योंकि भाइयों ने मकदूनिया से आकर मेरी हाजत को रफा कर दिया था, और मैं हर एक बात में तुम पर बोझ डालने से बाज रहा और रहूंगा। मसीह की सदाकत की कसम जो मुझ में है, अखिया के इलाके में कोई शख्स मुझे ये फख्र करने से न रोकेगा। किस वास्ते? क्या इस वास्ते कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं रखता? इसको खुदा जानता है, लेकिन जो करता हूँ वही करता रहूँगा, ताकि मौका ढूंढने वालों को मौका न दूँ, बल्कि जिस बात पर वो फख्र करते हैं उसमें हम ही जैसे निकले।
क्योंकि ऐसे लोग झूठे रसूल और दगाबाजी से काम करने वाले हैं और अपने आप को मसीह के रसूलों के हम शक्ल बना लेते हैं, और कुछ अजब नहीं, क्योंकि शैतान भी अपने आप को नूरानी फरिश्ते का हम शक्ल बना लेता है। बस अगर उसके खादिम भी रास्तबाजी के खादिमों के हम शक्ल बन जाएं, तो कुछ बड़ी बात नहीं, लेकिन उनका अंजाम उनके कामों के मुआफिक होगा।
मैं फिर कहता हूँ कि मुझे कोई बेवकूफ ना समझे, वरना बेवकूफ ही समझकर मुझे कबूल करो कि मैं भी थोड़ा सा फख्र करूँ। जो कुछ मैं कहता हूँ वो खुदावंद के तौर पर नहीं, बल्कि गोया बेवकूफी से और उस जुर्रत से कहता हूँ जो फख्र करने में होती है। जहाँ और बतेरे जिस्मानी तौर पर फख्र करते हैं, मैं भी करूँगा, क्योंकि तुम तो अक्लमंद होकर खुशी से बेवकूफों की बर्दाश्त करते हो। जब कोई तुम्हें गुलाम बनाता है या खा जाता है या फंसा लेता है या अपने आप को बड़ा बनाता है या तुम्हारे मुंह पर तमाचा मारता है, तो तुम बर्दाश्त कर लेते हो। मेरा ये कहना जिल्लत ही के तौर पर सही कि हम कमजोर से थे, मगर जिस किसी बात में कोई दिलेर है, अगरचे ये कहना बेवकूफी है, मैं भी दिलेर हूँ। क्या वही इब्रानी है? मैं भी हूँ। क्या वही इसराइली है? मैं भी हूँ। क्या वही अब्राहम की नस्ल से है? मैं भी हूँ। क्या वही मसीह के खादिम है?
मेरा ये कहना दीवानगी है।
मैं ज्यादातर हूँ, मेहनतों में ज्यादा, कैद में ज्यादा, कोड़े खाने में हद से ज्यादा, बारहा मौत के खतरों में रहा हूँ। मैंने यहूदियों से 5 बार 40-40 कोड़े खाए, 3 बार बेत लगे, 1 बार संसार किया गया, 3 मर्तबा जहाज टूटने की बला में पड़ा, 1 रात दिन समुन्द्र में काटा। मैं बारहा सफर में, दरियाओं के खतरों में, डाकुओं के खतरों में, अपनी कौम से खतरों में, गैर कौमों से खतरों में, शहर के खतरों में, बियाबान के खतरों में, समुन्द्र के खतरों में, झूठे भाइयों के खतरों में, मेहनत और मशक्कत में, बारहा बेदारी की हालत में, भूख और प्यास की मुसीबत में, बारहा फाका कशी में, सर्दी और नंगापन की हालत में रहा हूँ, और बातों के अलावा जिनका मैं जिक्र नहीं करता, सब कलीसियाओं की फिक्र मुझे हर रोज आ दबाती है। किसकी कमजोरी से मैं कमजोर नहीं होता? किसके ठोकर खाने से मेरा दिल नहीं दुखता? अगर फख्र ही करना जरूर है, तो उन बातों पर फख्र करूंगा जो मेरी कमजोरी से मुतल्लिक है। खुदावंद यीशु का खुदा और बाप, जिसकी अबद तक हम्द हो, जानता है कि मैं झूठ नहीं कहता। दमिश्क में उस हाकिम ने, जो बादशाह अरितास की तरफ से था, मेरे पकड़ने के लिए दमिश्कियों के शहर पर पहरा बैठा रखा था। फिर मैं टोकरे में खिड़की की राह दीवार पर से लटका दिया गया और मैं उसके हाथों से बच गया। कुरिन्थियों के नाम, पौलुस रसूल का 2 बाब 12। मुझे फख्र करना जरूर हुआ, अगरचे मुफीद नहीं, बस जो रोया और मुकाशफे खुदावंद की तरफ से इनायत हुए, उनका मैं जिक्र करता हूँ। मैं मसीह में एक शख्स को जानता हूँ, 14 बरस हुए कि वो यकायक तीसरे आसमान तक उठा लिया गया। ना मुझे ये मालूम कि बदन समेत, ना ये मालूम कि बगैर बदन के, ये खुदा को मालूम है। और मैं ये भी जानता हूँ, उस शख्स ने यकायक फिरदौस में पहुंचकर ऐसी बातें सुनी
जो कहने की नहीं
और जिनका कहना आदमी को रवा नहीं। मैं ऐसे शख्स पर तो फख्र करूंगा, लेकिन अपने आप पर सिवा अपनी कमजोरियों के फख्र ना करूंगा। और अगर फख्र करना चाहूं भी, तो बेवकूफ ना ठहरूंगा, इसलिए कि सच बोलूंगा। مگر تو بھی باز رہتا ہوں تاکہ کوئی مجھے اس سے زیادہ نہ سمجھے جیسا مجھے دیکھتا ہے یا مجھ سے سنتا ہے۔ اور مکاشفوں کی زیادتی کے باعث میرے پھول جانے کے اندیشے سے میرے جسم میں کانٹا چبویا گیا، یعنی شیطان کا قاصد، تاکہ میرے مکے مارے اور میں پھول نہ جاؤں۔ اس کے بارے میں نے 3 بار خداون سے التماس کیا کہ یہ مجھ سے دور ہو جائے، مگر اس نے مجھ سے کہا کہ میرا فضل تیرے لیے کافی ہے کیونکہ میری قدرت کمزوری میں پوری ہوتی ہے۔ بس میں بڑی خوشی سے اپنی کمزوری پر فخر کروں گا تاکہ مسیح کی قدرت مجھ پر چھائی رہے۔ اس لیے میں مسیح کی خاطر کمزوری میں، بے عزتی میں، احتیاج میں، ستائے جانے میں، تنگی میں خوش ہوں، کیونکہ جب میں کمزور ہوتا ہوں اسی وقت زور آور ہوتا ہوں۔ میں بے وقوف تو بنا، مگر تم ہی نے مجھے مجبور کیا، کیونکہ تم کو میری تعریف کرنا چاہیے تھا، اس لیے کہ میں ان افضل رسولوں سے کسی بات میں کم نہیں، اگرچہ کچھ نہیں ہوں۔ رسول ہونے کی علامتیں کمال صبر کے ساتھ، نشانوں اور عجیب کاموں اور معجزوں کے وسیلے سے تمہارے درمیان ظاہر ہوئی۔ تم کون سی بات میں اور کلیسیاؤں سے کم ٹھہرے بجز اس کے کہ میں نے تم پر بوجھ نہ ڈالا؟ میری یہ بے انصافی معاف کرو۔ دیکھو، یہ 3ری بار میں تمہارے پاس آنے کے لیے تیار ہوں اور تم پر بوجھ نہ ڈالوں گا، اس لیے کہ میں تمہارے مال کا نہیں بلکہ تمہارا ہی خواہ ہوں، کیونکہ لڑکوں کو ماں باپ کے لیے جمع کرنا نہیں چاہیے بلکہ ماں باپ کو لڑکوں کے لیے، اور میں تمہاری روحوں کے واسطے بہت خوشی سے خرچ کروں گا بلکہ خود بھی خرچ ہو جاؤں گا۔ اگر میں تم سے زیادہ محبت رکھوں تو کیا تم مجھ سے کم محبت رکھو گے؟ لیکن ممکن ہے کہ میں نے خود تم پر بوجھ نہ ڈالا ہو، مگر مکار جو ہوا اس لیے تم کو فریب دے کر پھنسا لیا ہو۔ بھلا جنہیں میں نے تمہارے پاس بھیجا، کیا ان میں سے کسی کی معرفت دغا کے طور پر تم سے کچھ لے لیا؟ میں نے تیتوس کو سمجھا کر اس کے ساتھ اس بھائی کو بھیجا، بس کیا تیتوس نے تم سے دغا کے طور پر کچھ لیا؟ کیا ہم دونوں کا چال چلن ایک ہی روح کی ہدایت کے مطابق نہ تھا؟ کیا ہم ایک ہی نقش قدم پہ نہ چلے؟ تم ابھی تک یہی سمجھتے ہوگے کہ ہم تمہارے سامنے عذر کر رہے ہیں۔ ہم تو خدا کو حاضر جان کر مسیح میں بولتے ہیں، اور آئے پیارو، یہ سب کچھ تمہاری ترقی کے لیے ہے، کیونکہ میں ڈرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ میں آ کر جیسا تمہیں چاہتا ہوں ویسا نہ پاؤں، اور مجھے بھی جیسا تم نہیں چاہتے ویسا ہی پاؤ کہ تم میں جھگڑا، حسد، غصہ، تفرقے، بدگوئیاں، غیبتیں، شیخی اور فساد ہوں، اور پھر میں جب آؤں تو میرا خدا مجھے تمہارے سامنے عاجز کرے اور مجھے بہتوں کے لیے افسوس کرنا پڑے جنہوں نے پیشتر گناہ کیے ہیں اور اس ناپاکی اور حرام کاری اور شہوت پرستی سے جو ان سے سرزد ہوئی توبہ نہیں کی۔ کرنتھیوں کے نام پولوس رسول کا دوسرا خط، باب 13۔ یہ 3ری بار میں تمہارے پاس آتا ہوں، 2 یا 3 گواہوں کی زبان سے ہر ایک بات ثابت ہو جائے گی۔ جیسے میں نے جب دوسری دفعہ حاضر تھا تو پہلے سے کہہ دیا تھا، ویسے ہی اب غیر حاضری میں بھی ان لوگوں سے جنہوں نے پیشتر گناہ کیے ہیں، اور سب لوگوں سے پہلے سے کہہ دیتا ہوں کہ اگر پھر آؤں گا تو در گزر نہ کروں گا، کیونکہ تم اس کی دلیل چاہتے ہو کہ مسیح مجھ میں بولتا ہے اور وہ تمہارے واسطے کمزور نہیں بلکہ تم میں زوراور ہے۔ ہاں، وہ کمزوری کے سبب سے مصلوب ہوا، لیکن خدا کی قدرت کے سبب سے زندہ ہے، اور ہم بھی اس میں کمزور تو ہیں مگر اس کے ساتھ خدا کی اس قدرت کے سبب سے زندہ ہوں گے جو تمہارے واسطے ہے۔ تم اپنے آپ کو آزماؤ کہ ایمان پر ہو یا نہیں، اپنے آپ کو جانچو، क्या तुम अपनी बाबत ये नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, वरना तुम ना मकबूल हो। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मालूम कर लोगे कि हम तो ना मकबूल नहीं, और हम खुदा से दुआ करते हैं कि तुम कुछ बदी ना करो, ना इस वास्ते कि हम मकबूल मालूम हो, बल्कि इस वास्ते कि तुम नेकी करो, चाहे हम ना मकबूल ही ठहरे, क्योंकि हम हक के बखिलाफ कुछ नहीं कर सकते, मगर सिर्फ हक के लिए कर सकते हैं। जब हम कमजोर हैं और तुम जोरावर हो तो हम खुश हैं, और ये दुआ भी करते हैं कि तुम कामिल बनो। इसलिए मैं गैर हाजिरी में ये बातें लिखता हूँ, ताकि हाजिर होकर मुझे उस इख्तियार के मुआफिक सख्ती न करना पड़े जो खुदावर ने मुझे बनाने के लिए दिया है, न कि बिगाड़ने के लिए। गरज आए भाइयों, खुश रहो, कामिल बनो, खातिर जमा रखो, यकदिल रहो, मेल मिलाप रखो, तो खुदा, मोहब्बत और मेल मिलाप का चश्मा तुम्हारे साथ होगा। आपस में पाक बोसा लेकर सलाम करो। सब मुकद्दस लोग तुमको सलाम कहते हैं। खुदावंद यीशु मसीह का फजल और खुदा की मोहब्बत और रूल कुछ की शराकत तुम सबके साथ होती रहे।